Recording in progress.
आखिरी क्लास आज की शुरू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लजीन अस्तफा अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ू अन्हु ذلك لمن خشي ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما हमने जुबान से तो ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कं वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलं वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। ठीक है, लेकिन कबूल किसकी होगी, कोई बताएगा ये दुआ कबूल किसकी होगी? ठीक है, मैंने उनको पहले से बता के नहीं बैठाया कल परसों परसों एक क्लास में भी यही कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब दिया उन्होंने, तो होता ना वही बेटे को पहले से तैयार करके लेकर आए हुए थे कि मैं ये सवाल पूछूंगा आप ये जवाब देना। नहीं, ऐसा बिल्कुल अलहमदुल्ला नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने कि कबूल उसकी होगी जो दिल से भी पढ़ेगा। ठीक है, जुबान से पढ़ने वाली दुआ जो है उसके ऊपर सवाब तो मिल सकता है, कबूलियत नहीं मिलती। ठीक है, तो सुन करके उसको समझ लेना और उसकी इत्तिबा कर लेना। ये जो हम दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह आप हमें सच दिखला दीजिए जैसा कि वाकई है, और झूठ और सच की इत्तिबा की तौफीक अता फरमा दीजिए, और झूठ दिखला दीजिए जैसे कि वाकई है, और उससे बचने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ये दुआ जब दिल से निकलेगी तब अल्लाह ताला उसको कबूल करेंगे, वरना हमारे बड़े भाई को जानते हैं आप, डॉक्टर इरफान साहब ऊपर रहते हैं, वो बचपन में जब आप जितने थे ना छोटे छोटे, मैं शायद आपके जितना होऊंगा, और भाई साहब जो है वो इतने बड़े होते थे, तो वो हमें एक बड़े मजे की बात करते थे। वो हम चढ़ाते थे ना, बड़े भाई चढ़ाते हैं छोटे भाई बहनों को, बात कहते थे यूं गुजर गई ऐसे कहते थे, ये बात तुम्हारे सर पर से शुभ करके गुजर गई ऐसे बोलते थे। ठीक है, यानी अंदर घुसी नहीं तुम्हारे, ये तुम्हें समझ में ही नहीं आई। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि क्लास में बैठे होते हैं और वो झुक करके गुजर रही होती है, ऊपर से अंदर नहीं जा रही होती, तो अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए दिल से। ठीक है, तब समझ में आती है और फिर बात बस हल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन, जो कि अशर मुबशरा के छठे सहाबी हैं जिनका हम पढ़े हैं, तो इनका आखिरी वाक्या जो है हमने उनके, किसी को याद है ये लिखा हुआ है, ये मुस्लिम रबी मामाखात के भाई थे, मामाखात वाले भाई।
के
अच्छा, आखिरी बात यही पढ़ी थी, और कोई आखिरी बात है जी? आपने तो बता दिया जी।
बारे में
दूसरे रूम में नहीं, रूम एक ही था। ठीक है, इतने रूम उस जमाने में कोई नहीं बने हुए थे, एक ही रूम था, वही मस्जिद नबवी थी। तो एक जमात, एक ग्रुप बैठा हुआ जो है वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा था, और दूसरा ग्रुप जो है वो बैठ करके इल्म की तकरार कर रहा था कि हमने नबी अलैहिस्सलाम से ये बात सीखी, आपसे सुनने हमें ये फरमाया, उसका ये मतलब है, उसका ये मतलब है, ऐसे करना ऐसे करना है, इल्म की तकरार कर रहा था बैठ करके। नबी अलैहिस्सलाम ने इनको भी देखा, फिर आपसे सलाम चल करके उनकी तरफ गए, उनको भी देखा, और फिर फरमाया कि वो जो जमात है वो बैठ करके कुरान मजीद की तिलावत कर रही है और अल्लाह ताला से दुआएं कर रही है, अल्लाह ताला चाहेंगे तो उसकी दुआ को कबूल कर लेंगे, और चाहेंगे तो अल्लाह की मदद से नहीं दुआ को कबूल करेंगे अगर चाहें अल्लाह ताला। ठीक है, और ये जमात जो है ये इल्म की तकरार कर रही है और फरमाया कि मुझे तो मुअल्लिम बना करके भेजा गया है, बुइस्तु तो मुअल्लिमन, और फिर आप वहीं पर बैठ गए उन लोगों के साथ बैठ गए। ठीक है, नाउज बिल्ला वो कि बुरा काम नहीं कर रहे थे, गलत काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ज्यादा पसंदीदा नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या काम था, वो इल्म की तकरार, इल्म सीखना और सिखलाना। ठीक है, तो ये बात आखिरी हुई थी, और इसी हमने किस वजह से करी थी, क्योंकि अब्दुलरहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु तआला जो है ये बहुत अमीर कबीर सहाबी थे और इतनी तिजारत करते थे और इतनी जो है वो खेती बाड़ी वगैरह भी इनके पास गार्डन्स भी थे और जमीनें भी थीं, लेकिन इसके बावजूद इनको इल्म हासिल करने का इतना शौक था कि इन्होंने चार और सहाबा के साथ मिलकर के एक ग्रुप बनाया हुआ था और उन ग्रुप के पांच सहाबा की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई अगर हम में से कोई जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में नहीं है तो बाकी जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम से जो बात सीखेंगे वो उसको बताएंगे जो नहीं आ सका किसी भी वजह से। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर हमने एक इससे अपने लिए एक दलील निकाली थी, वो क्या कि इससे जो है वो रिकॉर्डिंग का सबूत मिलता है। ठीक है, कि आप अगर किसी वजह से जेन्युइन रीजन की वजह से क्लास नहीं ले सके, नहीं सुन सके, तो रिकॉर्डिंग जो है ना उसको तो सुन ले। तो वो साहबी जो था ना वो दूसरों के लिए रिकॉर्डिंग करके रखते थे, ठीक है, जो नहीं लाइव ले सके। अच्छा, इसके बाद हम अगला वाक्या पढ़ते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफा एक लश्कर किसी जंग के लिए रवाना करना था, तो उसके लिए इतने पैसे वगैरह नहीं थे जिससे कि हथियार खरीदे जा सकें और लश्कर के सिपाहियों के लिए खाने पीने वगैरह का इंतजाम हो सके। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा कराम ऐलान किया करते थे हमेशा, ठीक है, कि भाई लाओ जो जितना दे सकता है वो लेकर के आए दे। तो अब्दुलरहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु फरमाने लगे कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इस वक्त जो है ना वो 4,000 दिरहम कैश मौजूद है, ठीक है, तो उसमें से 2,000 दिरहम जो है ना मैं अल्लाह की राह में पेश करता हूँ, यानी इस लश्कर के मालों के तैयारी के लिए 2,000 पेश करता हूँ और बाकी 2,000 जो है ना वो मैं अपने बीवी बच्चों के लिए रखता हूँ। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे वो 2,000 कबूल कर लिए और फरमाया बारक अल्लाहु लका फीमा आतैता, ठीक है, अल्लाह ताला बरकत दे उस चीज के अंदर जो कि तुमने दी है अल्लाह के रास्ते में, वह बारक लका फीमा अमसकता, और उसमें भी बरकत दे जो तुमने रोक ली है, अपने पास रख ली है, नहीं दी है। ठीक है, तो देखें इस तरह का वाकया पहले भी पढ़ चुके हैं ना सीरत के अंदर भी, कि गजवाए तबूक के लिए जब इकट्ठा हो रहा था सारा सारा माल असबाब, तो उमर रतान जो है वो फरमाने लगे कि आज जो है ना मेरे पास खूब सारा पैसा मौजूद है, मैं तो अबू बकर को आज रजुल तारान पीछे छोड़ दूंगा। ठीक है ना, अबू बकर मुझसे ज्यादा सबका नहीं दे सकते आज, क्योंकि वो हमेशा को आगे बढ़े जाते थे, हमेशा आगे बढ़े जाते थे। तो कहते हैं नहीं, आज तो वो उनके पास इतना पैसे, इनको अंदाजा हो जाता है ना दोस्त आपस में, कि भाई इसके पास आज ज्यादा पैसा है, इसके पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास ज्यादा पैसा, ये आपस में डिस्कशन वगैरह हो जाती है दोस्तों में। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे के सारे माल असबाब को 50-50% में डिवाइड किया और 50% लेकर के आ गए नबी अलैहिस्सलाम के पास। तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम, अच्छा इतना सारा लेकर के आ गए हो, तो क्या कुछ घर वालों के लिए भी छोड़ा है? आप स्वयं समझे कि जैसे सब कुछ ही लेकर के आ गए, इतना तो उम्र के पास होता नहीं है, इतना कैसे लेकर के आ गया, मतलब घर में कुछ नहीं छोड़ा? तो फरमाया कि नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर के लिए मैं 50% छोड़ करके आया हूँ, ये ना मैं इतना, जिस तरह नाउज़ुबिल्लाह अपनी तरफ से हम कह रहे हैं, नहीं मैं इतना भी कोई बेवकूफ के थोड़ी हूँ घर वालों के लिए खाली छोड़ करके आया हूँ, मैं 50% छोड़ करके आया हूँ घर के लिए। ठीक है, थोड़ी देर में नबी अलैहिस्सलाम के आशिफ सादिक अव्वल, जो अव्वल आशिफ सादिक थे, वो भी आ गए और सब कुछ लेकर के आ गए, सब कुछ लेकर के आए। तो उनसे भी यही पूछा कि भाई घर वालों के लिए कुछ छोड़ करके आए हो? तो फरमाया कि मैं घर वालों के लिए तो अल्लाह उसके रसूल को छोड़ कर आया हूँ। ठीक है, यानी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ कर आया हूँ, यानी कि अल्लाह के रसूल को छोड़ करके आया हूँ घर के अंदर, इनकी मोहब्बत काफी है हमारे लिए। ठीक है ना, बाकी दुनिया की चीजें जो है फिर से आ जाएंगी। और ऐसे ही हुआ, अबू बकर सिद्दीक रतान, देखें सोचे ना, अबू पहले भी बात हो चुकी है इस क्लास के अंदर, क्या उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रतान जो है वो कंगाल हो गए हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं होता था, नाउजुबिल्लाह भीख मांगते थे दूसरों से। ठीक है, हालांकि सब कुछ 100% लेकर के आ गया ना, अब तो कुछ पीछे नहीं बचा। ठीक है, लेकिन कंगाल फिर भी नहीं हुए, क्यों? इसलिए कि राजिब तो अल्लाह ताला है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि अबू बकर सिद्दीक खतान ने अल्लाह के खजानों को खाली कर दिया कि अब अल्लाह नाउजुबिल्लाह अल्लाह के पास कुछ नहीं था मजीद देने के लिए। भाई नहीं, अल्लाह के खजानों को कोई खाली नहीं कर सकता, उन्होंने खाली अपने छोटे से खजाने को खाली किया था, अल्लाह ने और दे दिया उनको, और इसी तरह से उनका माशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, तो वो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी दुआ फरमाई कि जो माल तुमने दिया है अल्लाह ताला उसमें भी बरकत अता फरमाए और जो तुम्हारे पास बचा हुआ है उसमें भी बरकत अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम की इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उनके माल में बरकत अता फरमाई और उनके पास भी माल जो है वो कभी खत्म नहीं हुआ, जैसे पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वफात के वक्त भी इतना माल था, इतना माल था कि सोने की ईंटों को कुल्हाड़े के जरिए से तोड़ा जाता था। अब ये माल वगैरह के बारे में तो हम पीछे भी कई दफा बात कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर एक और बात, दूसरी बात आपके सामने रिपीट करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो लोगों से सदका लेते थे, लेकिन कभी ऐसा भी करते थे कि किसी को कहते थे कि नहीं तुम इसको वापस ले जाओ, ठीक है तुम नहीं दो इतना सबका। कोई कहता था जज्बात में आकर, कोई कोई कहता था मैं अपना सब कुछ देने के लिए आया हूं, आप सब फरमाते थे कि नहीं तुम नहीं दो अपना सब कुछ, बल्कि सिर्फ 1/3 दे दो, किसी बाप को देना है 1/3 दे दो। कभी कोई लेकर के आता था सोने का, एक दफा अंडा लेकर के आया है, अंडा नुमा सोने की डली लेकर के आया, ठीक है नबी अल्लाह फरमाया वापस नहीं, ये नहीं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम कौन थे, सहाबा कराम के शेख थे, ठीक है। और शेख जो होता है ना, तो वो फिर अपने जो साथ स्टूडेंट्स होते हैं उनको जानता है कि उनके अहवाल कैसे हैं, इनका तकवा कितना ज्यादा है, इनके सब्र कितना ज्यादा है, इनके घर के अंदर मामलात कैसे हैं, इनके घर के अंदर, तो इस हिसाब से फिर हर एक के साथ अलग अलग मामला हो, ठीक है। और इसमें फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फिर बरकत डाल देते हैं, ठीक है। जब भी हमारे मशायख फरमाते हैं कि शेख का जो होना है ना, ये इंतहाई जरूरी है, और इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि जिसका कोई शेख नहीं होता फिर आगे क्या होता उसका शेख शैतान होता है, ठीक है। जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है, जब शैतान शेख होगा तो फिर वो तो कहेगा आइए हजरत जन्नत पे, मैं आपको जन्नत की सैर करवाता हूँ, मैं आपको जन्नत में पहुंचाता हूँ, ऐसे ही होता है, शैतान से जन्नत में पहुंचाता है उसके बाद नहीं, शैतान को जन्नत में नहीं पहुंचाता, शैतान जो है वो जहन्नुम में पहुंचवाता है, ठीक है। तो अब शैतान इसी वजह से शैतान जो है ना, वो शेख के बारे में बदगुमान करने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता है, किसी तरीके से अगर इसका शेख है भी बदगुमान हो जाए किसी तरीके से अपने शेख के बारे में, ताकि ये शेख को छोड़ दे। और जैसे ही ये शेख को छोड़ेगा फिर क्या होगा, इमीडिएटली शैतान जो है ना वो शेख बन जाए, ठीक है, इमीडिएटली शैतान शेख बन जाए, ठीक है, तो फिर वो जानों में डलवा देगा, और ऐसा तो जाहिर है हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हजरत थानवी रहमतुल्लाह, आपके दो भाई यहाँ बैठे हैं, दिशान भाई के वाले साहब, ने कल मजलिस में बात हो रही थी ये वाली, तो वो भी बैठे हुए थे अंकल, तो दिशान भाई के वाले, दिशान भाई के, तो उन्होंने घर जा करके फिर हमें हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह का मलफूज भेज दिया, ठीक है। और उसमें उन्होंने यही फरमाया था अशरफ अली थानवी ने कि जी मशाइख की सोबत जो है ना, वो मैं कहता हूँ, यानी फतवा दिया उन्होंने कि ये फर्ज ऐन है, ये फर्ज ऐन है, ठीक है, क्योंकि ईमान का बचाना फर्ज ऐन है, और ईमान की का जो बचाना है ये सिर्फ मशाइख की सोबत से ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, तो इस वजह से मैं फतवा देता हूँ कि ये फर्ज ऐन है। अच्छा, आगे अगला वाकया है कि अब्दुलरहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला को कितना वालिहाना इश्क था नबी अलैहिस्सलाम से। तो फरमाया कि एक दफा ना नबी अलैहिस्सलाम अंसार के एक बाग में, तशरीफ ले गए, तो अब्दुलरहमान औफ रज़ान भी साथ साथ थे नबी अलैहिस्सलाम के, तो नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पर जाकर के बाग में बस सजदे में चले गए, ठीक है, और इतना लंबा सजदा किया कि उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, हत्ता कि अब्दुलरहमान औफ रज़ान को डर हुआ कि कहीं नबी अलैहिस्सलाम को कुछ खुदा ना खास्ता हो तो नहीं गया, ठीक है, कि सजदे से उठ नहीं रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो अब्दुलरहमान बिन औफ जो है वो करीब आए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त सर उठा लिया और अब्दुलरहमान बिन औफ से पूछा कि क्या हो गया, क्यों इतना परेशान हो, कभी पूछते हैं ना कि क्यों इतना परेशान हो, क्या हो गया, क्यों घबराए हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैं आप इतना लंबा सजदा आप उठ ही नहीं रहे थे, मुझे घबराहट हो गई कि आपको खुदा ना खासा कोई उजर पेश ना आ गया हो ऐसा कि जिसकी वजह से आप उठ नहीं पा रहे हैं, या नाउज बिल्ला, जैसे एक दफा आयशा सिद्दीका तआला के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि वो भी घर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम सजदा फरमा रहे थे, आयशा सिद्दीका तआला जो है वो इंतजार कर रही है कि सजदा खत्म करें, आप सब सजदे ही खत्म नहीं कर रहे, हत्ता कि आयशा सिद्दीका तआला जो है वो पीछे से आई और नबी अलैहिस्सलाम का जो अंगूठा मुबारक था ना उसको हिलाया, ठीक है, कि जान है कि नहीं है अभी तक, कहीं जान तो नहीं निकाल ली मौत के फरिश्ते ने, इसका तो कुछ पता नहीं होता किसी को भी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा रेस्पॉन्ड किया अपना अंगूठा हिला करके, नहीं नहीं मैं जिंदा जिंदा हूं, मैं ठीक हूँ, सही है। तो फिर उसके बाद आगे हदीस आती है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। नबी अल सलाम पूछा क्यों कितने घबराए हुए थे, तो फरमाया कि इस वजह से मैं घबरा गया। तो आपने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे ये फरमाया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मन सल्ला अलैका, जो आपके ऊपर दुरूद पढ़ेगा, सल्लई तो अलैहि, मैं उसके ऊपर दुरूद पढ़ूं, ठीक है, यानी जो आप पर दुरूद भेजेगा मैं उस पर दुरूद भेजूंगा, यानी सलातो सलामती भेजूंगा। वो मन सल्लम अलैका सल्लम तो अलैहि, और जो आपके ऊपर सलाम पड़ेगा मैं उसके ऊपर सलाम भेजता हूँ, ठीक है, मैं उसके ऊपर सलाम भेजता हूँ। अब तस्वुर करें हम नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, ठीक है, तो ये तीनों चीजें सौत से सलावात और बा से बरकात और सीन से सलामती, ठीक है, तो इस दुरूद शरीफ के अंदर ये तीन चीजें आ रही हैं। तो अल्लाह ताला इसका जवाब दे रहे हैं, अब किसको जो है वो अल्लाह ताला का दुरूद और सलाम नहीं चाहिए, ठीक है, तो दुरूद शरीफ जो है वो हमें कसरत से पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चूंकि इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई थी, तो इस वजह से ना मैंने सजदा किया था, इतना लंबा सजदा, शुक्राने का सजदा इसको कहते हैं, ठीक है। नबी साहब नमाज नहीं पढ़ रहे थे उस वक्त, नमाज का वक्त नहीं होगा, लेकिन सजदा कर रहे थे शुक्राने का। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य शायद आज के क्लास में, बस इतना ही शायद हम और पढ़ सकें, कि ओहद के के मैदान में, बातें शादें नहीं करने भाई, ओहद के मैदान में क्या हुआ कि एक दफा ना, मतलब ओहद लड़ाई चल रही है और काफिरों मुसलमानों के दरमियान सब घमसान का रन पड़ा हुआ है। हजरत हारिस रजुल्ला तारन कहते हैं कि ओहद के दिन ना मैंने नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, तो आपसे मुझसे पूछा कि हारिस अब्दुलरहमान इब्ने औफ को देखा है, कहाँ है वो, ठीक है। तो हारिस ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उनको देखा था कि ओहद पहाड़ के दामन में, यानी इस दामन कहते हैं जैसे जैसे हमारा दामन, ये दामन है ना सामने, ठीक है, तो अब जो बाकी बॉडी है वो ऐसे है तो ये दामन है, ठीक है। तो उसी तरीके से पहाड़ भी जब कभी ऐसे होता है ना, तो उसके नीचे कोई लैंड एरिया होता है तो उसको उसका दामन कहते हैं, पहाड़ का दामन, दामने कोह, इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी अच्छी सी जगह है, दामन कोह कहते हैं उसको। तो वो मैंने देखा था कि वो पहाड़ के दामन में जो है ना, वो काफिरों से अकेले लड़ रहे थे, तनहा लड़ रहे थे वो, कोई काफी सारे काफिरों के खिलाफ, तो मैं उनकी तरफ जा रहा था ताकि उनकी मदद करूं, इतने में मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नजर आ गए, तो आप भी इसी तरीके से यानी एक्सपोज से, जो भी नबी अलैहि सलाम की उसको सिचुएशन थी ये तो नहीं लिखा हुआ, तो जब आप नजर आए ना तो मैं आपकी तरफ आ गई, कि बहरहाल आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके मुकाबले में, तो मैं आपकी तरफ आ गया कि आपको भी मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको उनको फरमाया कि इन्नल मलाइकता तुकातिलु मअहु, इन्नल मलाइकता, के बेशक के अल्लाह के फरिश्ते अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के साथ लड़ाई कर रहे हैं, काफिरों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, इनके साथ मिल करके लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हारिस सलाम फरमाते हैं कि मैंने जब ये बात सुनी ना, तो अब मुझे नजर आ गया नबी अलैहि सलाम को मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं जो है ना अब्दुलरहमान इब्ने औफ की डायरेक्शन में चल पड़ा, जाके देखो तो सही कि मलाइका कैसे उनके साथ लड़ रहे हैं। तो जब मैं उनके सामने पहुंचा ना, उनके पास पहुंचा, तो मैंने देखा कि उनके सामने सात मुशरिकीन जो थे ना वो मरे पड़े हुए थे, ठीक है, कत्ल हुए पड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अब्दुलरहमान इब्ने औफ, इन सबको आपने कत्ल किया है, तो कहने लगे कि दो को तो मैंने किया है, पांच को पता नहीं कौन कत्ल करके चला गया है, पांच को तो किसी नादीदा शख्स, नादीदा कहते हैं जो कि आपकी दीद में नहीं आता, दीद इसको कहते हैं ना आंख को, ठीक है, नजर को, तो नादीदा शख्स जो कि नजर नहीं आता था वो इनको कतल करके चला गया, ठीक है। तो हरे फरमाते हैं सदक अल्लाह व रसूल, ठीक है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बात फरमाई थी, ऑफ कोर्स सच्ची बात फरमाई थी, लेकिन इससे ईमान और ताजा हो जाता है, यकीन और मजबूत हो जाता है। तो अब ऐसे लोग थे सहाबाए कराम के फरिश्ते इनके साथ मिल करके, जब हम ये किताब में ये वाकया आज पढ़ रहे थे दोबारा आपकी क्लास के लिए, ठीक है, एक हफ्ता पहले पढ़ा था, वो नहीं रहता जहन में, तो आज दोबारा पढ़ रहे थे ना, तो अल्लाह ताला ने एक अजीब अंग्रेजी की का मुहावरा, अंग्रेजी का मुहावरा दिल में डाला, ठीक है, वो मुहावरा क्या है, कि अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है, यानी जो बर्ड्स जो होती है ना, जिनके पर जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक ही जैसे पर, यानी एक ही नस्ल की जो बर्ड्स होती है ना, वो झुंड में उड़ती हैं, वो ग्रुप में उड़ती हैं। आपने बर्ड्स के कभी ग्रुप्स देखे हैं? यहाँ तो कोई बर्ड ही नजर नहीं आती, ग्रुप कहाँ से नजर आएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं, वो कभी कभी उन्होंने बर्ड्स को माइग्रेट करते हुए अगर देखा होगा, हमने देखा है बहुत बचपन में, वो ऐसे जबरदस्त पैटर्न में उड़ती हैं, हैरान रह जाते हैं कि कौन से इनके ऊपर ज्योमेट्री अप्लाई होती है उसके, कि ऐसे पैटर्न में। खैर, तो बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब, जो इसका मफहूम ये होता है कि जो लोग बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं ना, तो वो फिर एक जैसा ही काम करते हैं, एक साथ मिल करके काम करते हैं। जैसे उर्दू में कहते हैं, दिल को दिल से राह होती है, दिल को दिल से राह होती है, जब दिलों में आपस में मोहब्बत हो जाती है, तो फिर एक साथ मिल करके जो है वो काम किया करते हैं। अब देखें, फरिश्ते ये किस किस्म की मखलूक है ही? और इंसान किस किस्म की मखलूक है? इंसान के लिए अगर मखलूक की टाइप पूछी जाए आपसे, तो क्या लफ्ज बताएंगे? कोई और बताए जो नहीं अब तक जवाब दे सका है? अशरफुल मखलूकात, हम भी अशरफुल मखलूकात है, आखिर है तो सारे के सारे इंसान। तो इंसान के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रहे हैं, तो जरा सा आप कोई और जवाब दे रहे थे? अशरफुल मखलूकात के अलावा कोई और वर्ड है किसी के पास? चलिए पहले फरिश्ते का बताते हैं, फरिश्ते किस किस्म की मखलूक? मासूम है, फरिश्ते मासूम है, हाँ, ला यासून अल्लाह है, नूरी मखलूक है। फरिश्ते कैसी मखलूक है? नूरी मखलूक, ठीक है, मुझे कुछ और याद आ गया, नूरी फोन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एक जमाने में जब जब वो डम फोन्स होते थे ना, वो नूरी फोन्स नहीं होते थे, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ से मार्केट में एक नूरी फोन मिल गया था। वो कैसा था कि वो छोटा सा नोकिया फोन था, बटन्स वाला, तो लेकिन जब उसमें कोई आती थी ना, कॉल आती थी ना, तो वो पूरा फोन लिट अप हो जाता था, ठीक है। तो वो हम यही जुब्बा पहन करके जो है, वो फोन जो है वो जुब्बे की जेब में होता था। तो हमारे एक दोस्त कहने लगे कि अवैस भाई, उनका नाम है ना, शिकागो में रहते हैं, तो वो मैं उधर ही कहने लगे मस्जिद में, कि काशिफ भाई वो आपका फोन आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, आपको कैसे पता चला कि मेरा फोन आ रहा है? कहते वो आपका नूरी फोन है ना, उसको जब कॉल आती है ना, तो अगरचे कि आपने उसको बदर पे लगाया हुआ होता है, लेकिन वो इतना नूर उसमें से निकल रहा होता है कि मुझे पता चल जाता है आपका फोन आ रहा है। तो वो उसको नूरी फोन कहा करते थे हमारे फोन को। तो फरिश्ते जो है ना, ये नूरी मखलूक है, नूर के बने हुए। और इंसान जो है वो किस टाइप की मखलूक है, अब कोई ना बताएगा? पंचर, पंचर नहीं, यहाँ पे लिखा होता है बंचर, ठीक है। उसको देख देख करके मुझे हमेशा बशर याद आ जाता है। पंक्चर जो होता है ना, पंक्चर गाड़ी के टायर का, तो अरबी में तो चूंकि पी नहीं होता, तो फिर वो उसको बंचर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको देख के बशर याद आ जाता है। तो इंसान जो है ना, ये बशर है। बशर का मतलब क्या? बा का मतलब विद, साथ, और शर का मतलब आपको पता है, गुना, गलतियां, शरारत, ठीक है। तो इंसान तो बशरी मखलूक है, शर वाली मखलूक है। लेकिन सहाबा जो है, उन्होंने ऐसी तौबा करी थी, शर से ऐसी तौबा करी थी कि वो बशर होने के बावजूद नूरी मखलूक जैसे बन गए। और नूरी मखलूक बनने के बाद क्या? बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है ना। अब उनके साथ साथ जो है ना, वो फरिश्ते मिल करके काफिरों से लड़े होते थे, ठीक है। उनको बम बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, उनको जो है वो बड़ी बड़ी मंजीनीके लाने की, और वो जमाने की जो मिसाइल होते थे उनकी जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए काफी थे, ठीक है। बाद में जरूरत पड़ी भी तो भी फरिश्ते साथ साथ होते थे, जब तक गुनाहों के ऊपर वापस नहीं आ गए। तो नजीब भाई जो बात हमें सुना रहे थे, वो 100% ऐसी है, ठीक है ना। तुम कितने ही मिसाइल बना लो, कितने ही बम बना लो, लेकिन अगर तुम शर अपना खत्म नहीं करोगे ना, तो तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। जी, फरमा रहे थे ना नजीब भाई, क्या फरमा रहे थे, किसी को याद भी है क्या कह रहे थे आखिर में? बिल्कुल आखिरी बात जो उन्होंने सुनाई, क्या कह रहे थे? सोचें सोचें सोचें, अस्बाब इख्तलाफ, चलो कुछ नहीं गुना कि अल्लाह ताला अंदर ही इख्तलाफ डाल देते, अल्लाह ताला अंदर ही दुश्मनी पैदा कर देते हैं। जब अंदर ही सब आपस में दुश्मन है तो किसी बैरूनी दुश्मन की कोई जरूरत है किसी की दुश्मन की जरूरत? इसराइल की जरूरत है मारने के लिए, अमेरिका की जरूरत है मारने के लिए, हिंदुस्तान की या काफिर नॉन हिंदू की जरूरत है? आप साहब बहुत सारे हिंदुस्तानी बैठे हैं, सो रहे थे हिंदू बोलना पड़ेगा, ठीक है, हिंदुओं की जरूरत है कि आके मारो भाई? आपस में ही एक दूसरे को मार मार करके तुम खत्म हो जाओगे तो किसी दूसरे की क्या जरूरत है? किस वजह से? अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, राइट? अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। तो इसका जो हल है ना आपस के इख्तलाफ खत्म करने का, ये हल ये नहीं है डंडा मारो है रिट, गवर्नमेंट की रिट से स्ट्रेट फायर करके अपने मुखालफिन को मार दो, और जो है वो लाठी चार्ज कर दो, और उठा करके जो है वो जेलों में बंद कर दो, और जो है वो इनको कत्ल कर दो, इनको जो है वो फांसी लगा दो, इनको उठा लो, इनको उठा लेते हैं, इनको गायब कर देते हैं, उनको अंदर बंद कर देते हैं, इनको गोली मार देते हैं, इनको फांसी पे चढ़ा देते हैं, सब खत्म हो जाएंगे, कोई दुश्मनी बाकी नहीं रहेगा, फिर अकेले मैं रहूंगा, बादशाहत मेरी कोई रहा ही नहीं तुम्हारे नीचे, तो अब तुम बादशाह बने हुए खुश हो रहे हो, ठीक है ना? जिनको अल्लाह नजर नहीं आता ना वो यही करता है, अंधे होते हैं ना जो दिल के अंधे, वो यही करता, गुनाहों की वजह से उनके दिल अंधे हो जाते। जब अंधे हो जाते हैं तो दुनिया की तो हर चीज नजर आ रही होती है, क्या नजर नहीं आता? अल्लाह, अल्लाह नजर नहीं आता, ठीक है? तो जब अल्लाह नजर नहीं आता तो फिर अपने गुनाह भी नजर नहीं आएंगे कि जिसकी तौबा करके फिर अल्लाह को मनाए, इसी वजह से ना वो डंडा जलाते हैं। अच्छा क्लास में तो फिर हर किस्म के बच्चे होते हैं, 6 से 60 साल तक के, ठीक है? तो हम सिर्फ 6 साल के बच्चों से तो बात करेंगे तो फिर तो बाकी लोग रह जाएंगे, तो इस वजह से 16 साल के बच्चों से बात करते हैं। आप लोगों को सियासत के बारे में क्या बताया था कि सियासत किस चीज को कहते हैं, किसी को याद है? माशाल्लाह साहब,
सियासत के अगर
मैनेजमेंट, माशाल्लाह। और कोई लफ्ज? इंतजाम। तो ये किस चीज के इंतजाम को कहते हैं सियासत? माशाल्लाह, ठीक है, जैद भाई ने 100% सही बात फरमाई, किसी भी जमात के इंतजाम को सियासत, किसी भी जमात, ठीक है? तो आप किसी भी जमात में कौन कौन सी कुछ मिसालें दें, तो आप बता रहे, माशाल्लाह, इन्होंने तो शुरू ही जो है ना असल जमात से किया है, घर। सही, सबसे पहली जमात कहां पर होती है? हमारी घर, ठीक है? और फिर बड़ी जमात में देखें तो फिर मोहल्ला भी हो सकती है, ये भी एक जमात है, ठीक है? मदरसा, ये भी एक जमात है, खानका, ये भी एक जमात है, शहर, ये भी एक जमात है, और आप कहाँ से आए हैं? मुल्क, ये पाकिस्तान से भी वापस आए राइट? तो पाकिस्तान भी एक जमात है, हिंदुस्तान भी एक जमात है। तो सियासत जो होते हैं ना वो हर जमात के इंतजाम को सियासत कहते हैं, ठीक है? पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, ठीक है? हर जमात, जहां भी जमात 3 बंदों की होती है उसको पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है? तो जिसको अल्लाह नजर नहीं आता तो फिर वो जो पॉलिटिक्स करता है उस पॉलिटिक्स को क्या कहते हैं? हाँ, जबरदस्त। जिसको अल्लाह नजर नहीं आता तो वो जब पॉलिटिक्स करता है ना, यानी जब वो मैनेजमेंट करता है ना, वो इंतजाम करता है ना, तो वो क्या करता है? खैर, किसी को यार, अल्लामा इकबाल से माजरत के साथ से अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, जुदा हो दीन से आसत से तो रह जाती है चंगेजी। चंगेज खान याद आ जाते फिर। ठीक है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है क्या चीज, चंगेजी। ठीक है, यानी जुल्म और बर्बरियत। तो दीन क्या चीज है, दीन है अल्लाह का निजाम, अल्लाह के निजाम को दीन कहते हैं। तो जब अल्लाह दीन, जब अल्लाह नजर से गायब हो जाता है, तो फिर जब हम सियासत करते हैं ना, तो फिर वो क्या होती है, चंगेजी। और चंगेजी के बारे में भी क्या सुना, डंडा मारो इसको, जो है वो ऐसे खत्म करो इसको, ऐसे जो है वो चुप करवाओ इसको, ऐसे जो है वो गोली मार दो इसको, ऐसे फांसी चढ़ा दो इसको, ऐसे उठा लो है, और इसको ऐसे अंदर कर दो, ये कर दो। और दीनी सियासत क्या चीज होती है, दीनी सियासत क्या चीज होती है, यानी जिस सियासत के अंदर दीन हो, जिसमें चंगेजी फिर नहीं होगी, तो ये क्या चीज होती है भाई,
अच्छा
अल्लाह का हुक्म। ठीक है, अल्लाह का हुक्म क्या मतलब, मुल्क को चलाना है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाना, ये कहलाएगी दीनी सियासत। शहर को चलाना है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाना, ये कहलाएगी दीनी सियासत। मदरसे को चलाना है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाना, ये कहलाएगी दीनी सियासत। और बिल्कुल इसी तरीके से घर को चलाना है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाना, ये कहलाएगी दीनी सियासत। और डंडे मार करके बीवी को चलाना, और डंडे मार करके जो है वो औलाद को चलाना, अगर घर में भी ये सियासत कर रहे हो, डंडे वाली सियासत, तो ये चंगेजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, चंगेजी। ठीक है, और मुल्क को चलाओगे तो वो भी चंगेजी कहलाएगी, और शहर को चलाओगे तो वो भी, मदरसे को भी चलाओगे, अगर इवन दीनी मदरसे को भी अल्लाह का हुक्म छोड़कर करके डंडे और उल्टी सीधी हरकतों के जरिए से चलाने की कोशिश करोगे, इवन दीनी मदरसा भी चंगेज खान का मैदान बन जाएगा, इवन दीनी मदरसा भी चंगेज खान का मैदान बन जाएगा। ठीक है भाई, याद रहेगा, समझ में पहले आया, समझ में बात आ गई, इंशाल्लाह इरादा करेंगे कि इसके ऊपर अमल की भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, अल्लाह से दुआ मांगने का इरादा करते हैं। अमल का इरादा तो बाद में करते हैं, पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगने का इरादा करते हैं कि ए अल्लाह, आप हमें दीनी सियासत समझा दीजिए, ताकि हमारे नीचे आपने जो भी जमात दी है, हम उस जमात को अल्लाह आपके हुक्म के मुताबिक चला चले। ठीक है, जोर जबरदस्ती जहालत और डंडे के जोर के ऊपर नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए हुए हुक्मों के मुताबिक चलाना शुरू कर दें। तो हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, तो सियासत से रिलेटेड इनका, इनके लाइफ का क्या बात है, एक बहुत अहम, कि जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात होने लगी ना, तो उमर रज़ियल्लाहु ने क्या किया कि भाई अब मेरे बाद किसी को खलीफा तो बनना है, अगर खलीफा नहीं होगा उम्मत मुस्लिमा का, तो फिर शैतान खलीफा भी बन जाता है। शैतान सिर्फ शेख नहीं बनता, बल्कि शैतान खलीफा भी बन जाता है, वो भी शेखी की एक फॉर्म होती है ना, पर वो शैतान आएगा, वो सारी मेहनत को जो है वो खत्म कर देगा, तो किसी को खलीफा फौरन से बनना है। तो उन्होंने जो है वो अबू बकर सिद्दीक रतान वाला तरीका इख्तियार नहीं किया, ठीक है ना, हालांकि अबू बकर सिद्दीक रतान से उनको क्या कम मोहब्बत थी, वो तो चाहते थे कि मैं नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रतान का जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। तो एक दफा उनको मुसलमानों ने मशवरा किया कि आप जो है ना वो वजीफा बढ़ा दें हम आपका, ठीक है, और आपको जो है वो अच्छा लिबास पहनना चाहिए और ये, तो उन्होंने तो डांट डपट के ना उनको चुप करवा दिया कि नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी हफ्जा रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे पूछा कि हफ्जा मेरी बेटी हो ना तुम, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बीवी भी तो रही हो ना तुम, ठीक है, उम्मातुल मोमिनीन में से हो, तो तुम मुझे बताओ कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम कैसे जिंदगी गुजारा करते थे। ठीक है, या तो हफ्जा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी वाकया भी है, और मैंने आयशा सिद्दीक़ा से भी ये सुना है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम कैसी जिंदगी गुजारा करते थे। ठीक है, तो उन्होंने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक रतान और नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो, उनके तो कपड़े ऐसे होते थे, पैवंद लगे हुए होते थे, और कुछ बचा के नहीं रखते थे, और एक्स्ट्रा कोई वजीफा नहीं, इस तरह की बातें फरमाई। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो इस इंतजार में हूं, मैं कब उन लोगों के पास पहुंच जाऊं, तो अगर मैं उन लोगों से हट कर भी अपने आप को कुछ बना दूंगा तो फिर मैं उनके पास कैसे जा सकूंगा, किस मुंह से मैं उनके पास जाऊंगा? ठीक है, तो उमर रतान जो है वो बिल्कुल हट करके कोई काम नहीं करना चाहते थे। ठीक है कि जो उन्होंने नहीं किया और जो इन्होंने नहीं किया तो मैं वो काम कर लूं, लेकिन सियासत के अंदर इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को खलीफा नहीं बनाया, इशारतन बता दिया कि अबू बकर सिद्दीक रतान कोई खलीफा बनाना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन नाम लेकर के नहीं फरमाया। ठीक है, लेकिन क्योंकि पूरी उम्मत मुत्तफिक थी, सारे सहाबा मुत्तफिक थे, अबू बकर सिद्दीक रतान ही खलीफा बने, और किसी के सवाल ही पैदा नहीं होता कोई बना सके, लेकिन नाम नहीं लिया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रतान ने नाम लेकर के गए, उमर इसने खलीफा बनना है मेरी जगह, अबू बकर रतान को नॉमिनेट करके गए कि यही बनेगा खलीफा मेरे पास। अब उमर रतान की बारी आई, उमर रतान उन्होंने ना तो ये किया जो नबी अलैहिस्सलाम ने किया कि बिल्कुल भी नाम नहीं लिया, ना ये किया जो अबू बकर सिद्दीक रतान ने किया कि नाम ले लिया कि इनको खलीफा बनाना, बल्कि क्या किया, 6 लोगों की कमेटी बना दी। ठीक है, अशराए मुबशरा सहाबा 6, उनकी कमेटी बना दी कि जी ये आपस में डिसाइड करें और 3 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करें कि इनमें से एक खलीफा बन रहा है। ठीक है, और अगर कोई डिसाइड हो जाए, कोई उसकी मुखालफत करे, अशराए मुबशरा है लेकिन छोड़ना नहीं उसको, जिंदा नहीं छोड़ना उसको। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 6 की कमेटी बन गई। अब जो है वो कौन भाई, क्या क्या कैसे हो सब कुछ, तो अब्दुलरहमान इब्ने औफ रहता है ना, अल्लाह ताला ने उनके दिल में अजीब बात डाली, सियासी बसीरत है, क्या सियासी बसीरत डाली कि इन्होंने फरमाया कि भाई ये 6 लोग जो है ना तो ये तो कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो ऐसा करते हैं कि तीसरा दिन जब आया तो कहने लगे कि वसीयत के मुताबिक उमर अदान की खिलाफत 6 आदमियों में मुनहसर है, 6 में से ही होगी, 6 के अलावा 7वां कोई नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इसको ना 3 आदमियों में मुनहसर कर देते हैं, लेट अस मेक इट सिंपलर, 6 इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट, लेट्स मेक इट सिंपलर, 3 आदमी में मुनसर कर देते हैं। और फरमाया कि मैं जो हूं ना वो नहीं, ये पहले इन्होंने नहीं फरमाया, लेकिन सब तैयार हो गए, हाँ ठीक है, 6 को 3 में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे करेंगे, जुबैर रतान ने फरमाया मैं अली को नॉमिनेट करता हूँ खिलाफत के लिए, अली रजी अल्लाह तआला। अब जुबैर रतान ये वही है कि जिन्होंने बाद में जाकर के जंगे जमल में अली रतान से मुकाबला किया है, लेकिन असलम तो मोहब्बत थी ना दिल में, ठीक है ना, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि इवन जंगे जमल में भी मोहब्बत गालिब आ गई, वो मसला हल हो गया। ठीक है, लेकिन उस वक्त जो है वो उसूली बात एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया था, तो उस वक्त ये करने की जरूरत पड़ गई थी, तो इतनी मोहब्बत थी और इतना अच्छा और अजीम समझते थे अली रतान को कि उन्होंने अली रतान को नॉमिनेट कर दिया फौरन से, और साद बिन अबी वकास रजी रतान जो थे तो उन्होंने अब्दुलरहमान इब्ने औफ रतान को नॉमिनेट कर दिया कि मैं इनको नॉमिनेट करता हूँ खिलाफत के लिए, और तलहा रजी तारन जो थे उन्होंने उस्मान गनी रजान को नॉमिनेट कर दिया कि मैं इनको, अब 3 रह गए, अब्दुलरहमान इब्ने औफ और अली रतान और उस्मान रजी तारन, अब 3 का मसला हो गया खाली, अब 3 में डिसाइड करना है। अब जो है ना वो अब्दुलरहमान इब्ने औफ रतान ने फरमाया कि भाई मैं तो विड्रॉ करता हूँ, मैं अपने हक से दस्तबरदार होता हूँ, मुझे नहीं चाहिए खिलाफत, मुझे नहीं बनना खलीफा। ठीक है, तो अब जो है ना वो 2 लोग रह गए, अली और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। ठीक है, तो अब जो है ना इन दोनों में से जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत शेखैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की पाबंदी का अहद करेगा उसके हाथ पर बैत कर ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि अलहदा अलहदा हजरत अली रतवान से कहा और हजरत उस्मान से कहा कि आप दोनों जो है ना ऐसा करें कि अब मेरे हाथ में फैसला ले लें, पहले तो अपने आप को विड्रॉ करा लिया, ठीक है कि मैं तो इस इलेक्शन की दौड़ में हूं ही नहीं, राइट, हमारे ये कहते हैं दौड़ से विड्रॉ कर डाल देना, ठीक है, दस्तबरदार हो गए दूसरे के हाथ में। फिर कहते हैं कि अब आप जो है ना आप दोनों का हक के फैसले का हक मेरे हाथ में दे दें, तो इस पर वो दोनों राजी हो गए। कितने कितने सादा लोग थे यार, कितने सीधे सादे, हम कहते हैं नाउज बिल्ला, तुम्बा नाउज बिल्ला, हम ऐसे लोगों को ना आज पप्पू कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं ऐसे लोग, जो सादा लोग होते हैं, सीधे लोग होते हैं, उनको हम बेवकूफ और पप्पू इस तरह की चीजें कहते हैं। ठीक है, लेकिन अल्लाह को ये लोग बहुत पसंद है, बल्कि अल्लाह को यही लोग पसंद है, सीधे और स्ट्रेट और सादा लोग। ठीक है, कुलू कौलन सदीदा का हुक्म भी इसी वजह से है ना, सीधी बात किया करो। तो दोनों उस पर राजी हो गए और अब्दुलरहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में इख्तियार दे दिया। अब जो है ना वो और तमाम सहाबे कराम मस्जिद में जमा हुए और अब्दुलरहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मुख्तसर लेकिन मुअस्सर तकरीर के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। इसके बाद हजरत अली ने बैत के लिए हाथ बढ़ाया, यानी उस्मान तआला के हाथ पर बैत कर ली, और जैसे ही अली तआला ने बैत के लिए हाथ बढ़ा दिया, अब तो बस सारे लोग जो है ना उस्मान तआला के ऊपर बैत करना शुरू हो गए और उनको खलीफा बना गए। तो अब देखिए, बज़ाहिर उमर फारूक रतान जैसे जी शऊर, जी क्या कहते हैं, जी रख, जी बहुत सारी जी, ये वाला वो वाला ये वाला वो वाला, सारी अच्छी चीजें, उन्होंने बज़ाहिर इंतहाई एक डिफिकल्ट सिचुएशन छोड़ दी थी कि अब 6 लोग जो हैं तकरीबन इक्वल लेवल के लोग हैं सारे के सारे, इनमें जो है वो कैसे फैसला होगा। लेकिन देखें क्या लोग थे, ये फरिश्ता सिफत लोग थे। ये कैसे लोग थे? फरिश्ता सिफत लोग थे, नूरी मखलूक जैसे बन चुके थे, अगरचे कि ये वो मौका था कि जिसके ऊपर क्या हो सकता था, बताएं जरा क्या हो सकता था इस मौके पर, कोई और साथ भी बता चुके हैं, कोई और क्या हो सकता था, मैंने मुस्तफा भाई से नहीं पूछा भी। इस मौके पर सिविल वॉर हो सकती, सिविल वॉर इसको उर्दू में कहते हैं, खाना जंगी हो सकती थी, तलवारें बाहर आ सकती थी, खून खराबा हो सकता था, और उम्मत जो है वो शायद 6 हिस्सों में बढ़ जाती, हर के पीछे एक ग्रुप अगर हो जाता, 6 हिस्सों में उम्मत बढ़ जाती, या 2 हिस्सों में, या 3 हिस्सों में, या 4 हिस्सों में बढ़ जाती। लेकिन चूंकि ये गुनाह वाले लोग नहीं थे बल्कि ये गुनाह से नफरत करने वाले लोग थे, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर भी अल्लाह ताला ने चुटकी बजाते हुए मसला हल करवा दिया। इसको कहते चुटकी बजाने में मसला हल हो गया, एक बंदे के दिल में नतीजे में सोल्यूशन डाल दिया, उन्होंने ये मशवरा दिया, दूसरे भी राजी हो गए, फिर ये मशवरा दिया, उसमें भी लोग राजी हो गए, ये और सारा मसला हल हो गया। ठीक है, इसके लिए उनको कोई जो है ना वो अफलातून और मैथमेटिक्स और ये वो साइंस टेक्नोलॉजी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। तो भाई ये है अल्लाह, ये है हमारा परवरदिगार जिसके इख्तियार में ये कुछ है, ठीक है ना। दुनिया की मादी असबाब तो क्या, इंसानों के दिल उनके इख्तियार में अल्लाह ताला के, ठीक है। तो हम जो है ना वो अल्लाह को मनाने की मेहनत करें, हम दुनिया वालों को मनाने की मेहनत जितनी करते रहेंगे अल्लाह को नाराज करके ना, उतनी ज्यादा जो है वो हमारे हालात खराब होते चले जाएंगे, और वी डोंट नो वॉट इज वेटिंग फॉर अस नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन अल्लाह को राजी करने की मेहनत करेंगे ना, तो दुनिया वाले उनका भी मसला हल हो जाएगा। ये नहीं हम कह रहे कि दुनिया वाले सारे राजी हो जाएंगे, जरूरी नहीं है कि वो फिर भी राजी हो जाए, हो सकता है अल्लाह ताला राजी कर दें, हो सकता है ना भी राजी करें, लेकिन हम इत्मीनान और सुकून के साथ रहेंगे, और हमारी कब्र भी जो है ना वो इत्मीनान और सुकून वाली बन जाएगी, हशर भी इत्मीनान और सुकून वाली बन जाएगी, और उसके बाद जन्नत में तो इत्मीनान ही इत्मीनान और सुकून ही सुकून, ठीक है ना। यह है अल्लाह को राजी करने का पाथ, ठीक है। दुनिया भी इत्मीनान वाली, कब्र भी इत्मीनान वाली, हशर और आखिरत पूरी की पूरी इत्मीनान वाली, और अल्लाह को नाराज करके इसको राजी करने की, और इसको राजी करने की, और उससे दंगा फसाद करने की, और उससे लड़ाई करने की। मैं बड़ा अकलमंद हूं, आई नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, मैंने पहले भी हैंडल करी है और मैं अब भी हैंडल कर सकता हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास अकल है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास तजुर्बा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये कौन होते हैं? ये घटिया किस्म के लोग होते हैं, ये बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं, ये सिर्फ फसाद को बढ़ा रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, चाहे ये मुल्की लेवल पे फसाद हो, चाहे दुनिया के लेवल पे फसाद हो, चाहे एक छोटे से घर के लेवल पे फसाद, सिर्फ बेगम साहिबा के साथ भी फसाद होता है ना, उसको भी ये ऐसे लोग जो होते हैं ना जिनको अल्लाह नजर नहीं आता गुनाहों के तारीकी की वजह से, ये इवन अपनी बीवी को नहीं सेट कर सकते, ये बीवी के साथ मसला हल नहीं कर सकते, और मसला सारा यही है अल्लाह नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे किसी बंदे को जो बीवी को भी सेट नहीं कर सका, उसको बना दो आप मुल्क का सदर उसको बना दो आप जो है वो वजीर आजम या कुछ और इस किस्म की चीज, तो अब उसने क्या करना है? वही करना है जो बीवी के साथ किया उसने, वही करना है जो घर के अंदर उसने किया, वो आप पूरे मुल्क के अंदर फसाद फैलाएगा, ठीक है ना। तो इसका मसला ये, इसका तरीका ये नहीं है कि अब जो है वो अजदवाजी ताल्लुकात की क्लासेस लेना शुरू कर दें और उसके जो अंदर PhD करने में मुझे तमगा मिल गया है मैरिटल रिलेशनशिप्स के अंदर, अब मैं सारे मसले हल कर लूंगा। वो आप बाद में करते रहिएगा, हजरत जी के बयान बाद में सुनते रहिएगा, पहले तो आप अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह ये जो आपने बीवी को अफलातून बना दिया है, या बच्चों को जो है ना वो आपने मेरे सर पे सवार करवा दिया है, या जो है ना वो मुल्क के अंदर बगावतियों को जो है वो मेरे ऊपर जो है वो सवार करवा दिया है, अल्लाह ये मेरे गुनाहों की वजह से, ये मेरे अपने गुनाहों की वजह से है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनस्सालिमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह आप मुझे माफ कर दीजिए, ए अल्लाह आप मुझे माफ कर दीजिए, ए अल्लाह मैं आपको माफ किए बगैर यहां से नहीं उठूंगा, मैं आपको माफ किए बगैर यहां से नहीं उठूंगा, नहीं मैं अपना घर टूटता हुआ नहीं देखना चाहता, मैं अपना मुल्क टूटता हुआ नहीं देखना चाहता, मेरा मुल्क पहले भी टूट चुका है या अल्लाह, मेरा मुल्क पहले भी टूट चुका है, हजारों लाखों मर्द औरतें बच्चे मारे जा चुके हैं, कितनी औरतों की इज्जतें लूटी जा चुकी हैं, इसी मुल्क जिसको कि हम मदीना तैयबा कहते हैं, ये दो लख्त हो चुका है पहले भी, ये दो लख्त हो चुका है, लाखों औरतों की इज्जतें बर्बाद हो चुकी हैं, ए अल्लाह मैं अब दोबारा नहीं ये सब कुछ देखना चाहता, हम दोबारा इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरना चाहते या अल्लाह, हम अपने गुनाहों पे आपसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए, आप हमें माफ कर दीजिए, और हमें सर के बालों से पकड़ करके अपनी बंदगी के रास्ते के ऊपर चला दीजिए, ऐसे अल्लाह से माफी मांगने की जरूरत है। ठीक है, बुकरातियां जमाने की कोशिश ना करें, बुकरातियां जमाने की कोशिश ना करें, अफलातून बनने की कोशिश ना करें, बल्कि बंदा बनने की कोशिश करें, बंदा बनने की कोशिश करें, हम बहुत अफलातून बनते हैं, बहुत अफलातून बनते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं वैसे होना चाहिए, एक से एक हमारे पास दलीलें हैं, बकवास है सारी की सारी, ये दलील एक दलील होती है ईमान वाले के पास, माफी की दलील, तौबा की दलील, इस तौबा के जरिए से वो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को जो है ना वो जेर कर लेता है, बड़े से बड़े मसले को जो है वो हल करवा लेता है, क्योंकि तौबा से फिर उसको अल्लाह की मदद मिलती है, अल्लाह की मदद मिलती है, और जो अल्लाह की मदद अपने तौर पर अपने साइड पे नहीं कर सकता ना, वो अपनी अफलातूनी और अपनी बुकरातियत और अपनी अकलमंदी और अपना इल्म और अपना सोशल मीडिया की जो है वो एक्टिविटी, इसकी बुनियाद पर वो किसी काबिल नहीं है, वो शख्स राख भी होने के वो काबिल नहीं है, वो सिर्फ जहन्नुम का ईंधन बनने के काबिल है वो शख्स। अल्लाह ताला हमें इस गलत फहमी से बाहर निकलने की तौफीक अता फरमा दे, इसके लिए हमें दिल से, बात कहाँ से शुरू हुई थी, दुआ कबूल होती है जो दिल से निकलती है, जो उन्होंने जवाब दिया था, हमें दिल से ये दुआ मांगने की जरूरत है, अल्लाह ताला हमें दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा दे, व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह। सलाम, पहले हम असर की नमाज पढ़ लेते हैं। सुहेल भाई आपने जो ऑफर करी थी हम आपकी तरफ कर लें फिर, लेकिन फिर भी दो जमातें में बनानी पड़ेंगी, जिसने एक जगह पे बनानी है।
Recording stopped.